भारतीय अपराध जगत के इतिहास में दिल्ली के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां में हुए तंदूर हत्याकांड को सबसे जघन्य और क्रूर अपराध की संज्ञा दी जाती है। 2 जुलाई 1995 को यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी और पार्टी की सदस्य नैना साहनी को गोली मारकर अपने रेस्तरां के तंदूर में जिस तरह जलाने की कोशिश की, उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इस हत्याकांड की जांच करने वाले और तंदूर मर्डर द क्राइम दैट शुक द नेशन के लेखक मैक्सवेल परेरा बताते हैं,
तंदूर इज अवन विच इज लेजेंडरी ऑफ इंडियन क्यूजीन। तंदूरी जो खाना होता है उसको इस नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल आई मीन दे कांट डू विदाउट दिस थिंग बिकॉज इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड आई विल यूज अ वर्ड लाइक ग्रैंडेस्ट मोड ऑफ कुकिंग। ऐसी चीज को जो इस्तेमाल किया एक बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, एक रिवल्शन हॉरर जो आपके मन में पैदा होता है। उन दिनों में समझ लीजिए एक साल बराबर लोगों ने तंदूर खाना बंद कर दिया था और तंदूरी खाना बिल्कुल सफर हो गया उस वक्त।
2 जुलाई 1995 को रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। वो गलती से अपना वायरलेस सेट पुलिस चौकी पर ही छोड़ आए थे। तभी उन्हें अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां के प्रांगण से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। मैंने इस समय केरल के शहर कोल्लम में रह रहे अब्दुल नजीर कुंजू से संपर्क किया और उनसे उस दिन का घटनाक्रम बताने के लिए कहा।
मैं पेट्रोलिंग करते हुए आया तो उस होटल का बगिया नाम का रेस्टोरेंट थे, उसमें से आग का लपटे दिखाई दिया था। मैं उसी टाइम दौड़ के गेट पर पहुंचा, ये सुशील शर्मा ये कनात लगा के गेट पर खड़े थे ताकि अंदर जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कुछ नहीं है, आप चले जाओ, हम पार्टी का बैनर वगैरह जला रहे और कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहां से वापस तो मुड़ गया, लेकिन मुझे मन में कुछ डाउट सा लगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं पीछे साइड से होटल का बैक साइड से जो दीवार है करीब 8-8.5 फुट का दीवार है, वो दीवार फांद के मैं अंदर गया तो जो दूसरा जो अक्यूज है जो केशव कुमार है वो आग को तेज कर रहा था, बल्ली से उलट पुलट कर रहा था। उससे भी मैंने पूछा, भाई साहब आप आग बुझाने की वजह आप तेज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम पार्टी के बैनर वगैरह जला रहे, कुछ नहीं है। इतने में मेरा नजर पड़ा उस लाश के ऊपर जिसका आंतड़ी बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। तो मुझे डाउट होने पर मैंने केशव से पूछा, भाई साहब ये क्या है? तो केशव ने बोला ये बकरा भूंद रहा है। लेकिन मैं जो अंदरी देखा वो बकरे का अंदरी से डिफरेंस थे, तो मैं तसल्ली से जाके वो तंदूर काफी बड़े थे उस तंदूर के पास जाके देखा, बल्ली से उसको थोड़ा हटा के देखा तो वो एक लेडी की लाश थे जिसका हाथ पैर सब जल चुके थे।
करीब 1 बजे रात को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर उप पुलिस आयुक्त आदित्य आर्य थे। फोन सुनते ही परेरा आनन फानन में अशोक यात्री निवास पहुंच गए।
एक मुजरिम को हेड कांस्टेबल हाथ को हाथ पकड़कर काबू कर लिया था और उसका तो चेहरा बिल्कुल गिरा हुआ था और बाकी तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे, कोई मैप बना रहे थे।
बॉडी वहीं पर थी या
बॉडी एक ब्लैक पॉलिथीन के ऊपर, इट वॉज इन अ फीटल पोजिशन, जैसा जब जलाई जाती है बिल्कुल लिम्स तो नजदीक आ जाते हैं। सो आई मीन इट वॉज अनरिकग्नाइजेबल एक्सेप्ट दैट उनका जूड़ा पीछे का जो बाल जला नहीं हुआ था और तब तक तंदूर के कंटेंट्स बाहर निकाले हुए थे, उसमें कुछ जो गिरी हुई हड्डियाँ पड़ी थी, पाजेब पड़े थे। देयर आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक टॉर्सो, टॉर्सो का फ्रंट पोर्शन तो बिल्कुल लाइक स्टमक बर्स्ट होकर इंटेस्टाइन्स वेर आउटसाइड द दिस थिंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेर वेरी बैडली बर्न्ट।
जब नैना साहनी का शव जलाने में दिक्कत आई तो सुशील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने के लिए भेजा। उस समय कनॉट प्लेस थाने के SHO निरंजन सिंह बताते हैं कि नैना साहनी के शव को तंदूर के अंदर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था।
मैंने मौका पर अंदर घुसकर जाकर देखा, तंदूर के ऊपर एक चार्ड औरत की लाश पड़ी हुई थी। जो तंदूर है वो तंदूर के ऊपर डेड बॉडी थी, तंदूर के अंदर डेड बॉडी नहीं थी। और जिस तरीके से एक चिता को जलाया जाता है, उस डेड बॉडी को तंदूर के अंदर नहीं डाला हुआ था।
अब सवाल उठता है कि सुशील शर्मा ने किन परिस्थितियों में नैना साहनी की हत्या की थी और हत्या से तुरंत पहले दोनों के बीच क्या क्या हुआ था।
तब सुशील शर्मा ने बताया था कि इंसिडेंट के बाद में उसने डेड बॉडी को पहले पॉलिथीन में रेप किया, फिर चादर में रेप किया, फिर उसको उठा नहीं पाया, ड्रैग करके नीचे तक अपनी मारुति कार में लाया। तो उसके मन में आइडिया आया था, एक ये एक स्वाभाविक है कि अब इसको डिग्गी में तो रख लिया, कार की डिग्गी में, इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। तो उसके दिमाग में यमुना रिवर में उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक आइडिया आया, लेकिन उस आइडिया को उसने बदल दिया कि कोई देख ना ले, और उसने अपने ही रेस्टोरेंट में इसको जलाकर पूरे सबूत को, पूरी डेड बॉडी को नष्ट करने का उसका ख्याल आ गया, जो उसने सेफ सोचा। डिसीज्ड मृत का नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में मियां बीवी की तरीके से रहते थे, लेकिन उस शादी को उन्होंने एक सामाजिक तौर पर सबके लिए उजागर नहीं किया था, लेकिन नैना उसको कंटिन्यूअस प्रेस करती थी कि इस शादी को उजागर करो, और इस बात से दोनों में थोड़ा फ्रिक्शन आता था। ये भी बात सामने आई कि नैना ने सुशील के आदत से, सुशील के प्रेशर से, सुशील की एट्रोसिटीज से तंग आकर अपने पुराने मित्र मतलूब करीम से मदद की गुहार की। मतलूब करीम ने उसकी मदद की और उसको बाहर भेजने का, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, वहां जाने के लिए जो भी संभव मदद थी वो मदद की। सुशील शर्मा को नैना के ऊपर शक हो गया, जब भी वापस आता था तो घर के लैंडलाइन टेलीफोन को चेक कर लेता था, एक बाद में किस किस से बात हुई है। और घटना के दिन जब उसको रीडायल करके आगे से मतलूब का नंबर पता लगा, तो फिर उसको ये कंफर्म हो गया कि नैना मतलूब से अभी भी संपर्क रखे हुए है, और उसने वेपन का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस उसके पास लिया हुआ था, रिवॉल्वर से जानबूझकर उसकी हत्या करने के इरादे से फायर करके उसको गोलियां मारी। जब मैं मौके पर पहुंचा फ्लैट के, तो जगह जगह खून, रिवॉल्वर की एक लेड, एसी की टीवी में बुलेट होल। मौके का इंस्पेक्शन करने से मुझे ये कंफर्म हो गया था कि इस इंसिडेंट में वेपन का, रिवॉल्वर का, फायर आर्म का प्रयोग हुआ है।
उधर सुशील शर्मा ने हत्या करने के बाद वो रात गुजरात भवन में गुजरात काडर के एक आईएएस अधिकारी डीके राव के साथ बिताई। फिर वो पहले टैक्सी से जयपुर गया और फिर वहां से चेन्नई होते हुए बेंगलोर पहुंचा।
वो सुशील उस दौरान दिल्ली छोड़कर तो पहले जयपुर गया था, जयपुर से वो बॉम्बे गया था, बॉम्बे से मद्रास गया था। मद्रास में उनने कॉन्टैक्ट से, अपना जो पार्टी कॉन्टैक्ट से, एक लॉयर के थ्रू, अनंत नारायण, उनके थ्रू बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर लिया। और वो तो एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करके वो तिरुपति चले गया अपना चेहरा बदलने के लिए। तब तक हल्ला मच चुका था कंट्री में, फिर भी मद्रास जज ने उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दिया। मैंने बात किया कमिश्नर मद्रास से और मैंने एसीपी रंगनाथन को भेजा मद्रास में ये बेल एप्लीकेशन फाइट करने के लिए। जब उनको पता लगा इधर आग लगी है मद्रास में, वो उधर से जाकर लॉयर के साथ जाकर बेंगलोर में सरेंडर करने के लिए कोशिश किया। तब उन्होंने जाकर किसी पुलिस वाले जो था उधर, उन्होंने इनको जाकर कहा हमारे यहाँ आकर सरेंडर करो। उनको भी इच्छा थी थोड़ा पब्लिसिटी हमें मिले अरेस्ट करने का, और हमें खबर आ गई पीटीआई का, उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कर उधर हमें अरेस्ट कर लिया, कहकर ये कर दिया। सो वो पीटीआई की खबर हमें मिली शाम को और एक धक्का लगा हमें। सो उस वक्त रात हो रहा था, मैं मीटिंग रखकर कमिश्नर के साथ डिसाइड कर लिया मैं खुद जाऊं, और नहीं तो फ़ायदा था क्योंकि मैं कर्नाटक का था और मेरी पढ़ाई वहाँ हुई थी, मैं वकील भी था उधर पुलिस ज्वाइन करने से पहले।
इस पूरे मामले में सुशील का मैनेजर केशव उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। उसने पहले तो अप्रूवर बनने से इनकार कर दिया, बाद में जब वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हुआ तो सुशील शर्मा ने उस पर ये फैसला न लेने के लिए भारी दबाव बनाया।
केशव और सुशील दोनों ही तिहाड़ जेल में डिटेन थे। पहले तो केशव उसका लॉयल एम्प्लॉई, एक बिल्कुल करीबी होने का कोई शक नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब केशव ने रियलाइज करके अपना मन अप्रूवर बनने का बना लिया और सुशील को इस बात की खबर लगी, तब सुशील ने केशव को तिहाड़ जेल के अंदर भी डराना धमकाना शुरू किया। और एक इंसिडेंट जो केशव ने मुझे बतलाई, उसको कोई नशीली दवाई दे दी गई और एक डेढ़ दिन तक वो जब अपनी नींद से नहीं उठा, तब जेल वार्डन को पता लगा कि इसने डेढ़ दिन से खाना भी नहीं खाया है। तब जेल वार्डन को केशव ने बताया कि मुझे ऐसी नशीली दवाई दे दी गई है। उसी दिन उसको उस वार्ड से सेग्रीगेट करके दूसरी वार्ड में डिटेन कराया।
इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुशील शर्मा को अपने राजनीतिक संपर्क न इस्तेमाल करने देना। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि जांच के दौरान भारत के तत्कालीन गृह सचिव पद्मनाभैया ने खुद जाकर सुशील शर्मा और नैना साहनी के मंदिर मार्ग वाले फ्लैट का मुआयना किया।
उनमें ऐसा भी न्यूज आई थी जो नैना के लेजॉन्स एलेज किया था मिनिस्टर लोगों के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, घबरा गए शायद ये क्या है, सो उन्होंने आईबी से इंक्वायरी रख दी, इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी और मिनिस्टर लोग तितर बितर हो गए सारे घबरा कर, हाँ हम हमारे बारे में कुछ ना कुछ, और कई लोग गलत बोल पड़े, किसी ने कहा मैंने कभी देखा भी नहीं उसको, किसी ने कहा नहीं जब से मैंने दूसरी शादी की उसके बाद मैंने किसी लेडी की तरफ देखा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब इंक्वायरी वगैरह होती है क्यों ये केस इतना जो प्रोमिनेंट ले चुका है भी, और ऑपोजिशन वाले मदन लाल खुराना वगैरह भी फैला रहे थे काफ़ी चीज़ें, और उन्होंने कहा चौहान साहब को जो होम मिनिस्टर थे उनको कहा इसमें थोड़ा खुद देखिए, उन्होंने राजेश पायलट थे उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम एंड, और उनको तो आदेश दिया था तुम ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो और आप इससे परे हटो, उन्होंने होम सेक्रेटरी को कहा जा खुद जाकर देखने के लिए, बेचारे होम सेक्रेटरी मौके पर पहुँच गए मौको मुलाजा के लिए। अब मजाक की बात है ये सारी चीज़, होम सेक्रेटरी ने मगर पहली चीज़ कहा, ये कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो है बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं।
इस जांच में पहली बार डीएनए तकनीक और स्कल इमेजिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया।
मैंने मशेलकर साहब थे जो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे साइंटिफिक रिसर्च के वगैरह, सो उनसे बात किया मैंने, उन्होंने डॉक्टर लालजी सिंह को भेजा हैदराबाद से सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उन्होंने आकर सैंपल्स लेकर हैदराबाद जाकर हमें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में साबित कर लिया दैट दिस सैंपल कैन नॉट बी ऑफ एनी अदर पर्सन देन द ऑफस्प्रिंग ऑफ जो उनके माता पिता के जो सैंपल लिए थे उससे साबित कर लिया उन्हीं की बेटी है कहकर। फिर भी हमें और ये भी किया, स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट होता है वो भी कराया, उससे भी साबित कर लिया दिस इज नैना साहनी। सब कुछ करने के बाद हमें चार्जशीट फाइल कर लिया, 26 डेज के अंदर हमें चार्जशीट कोर्ट में डाल दिए।
सालों तक चले मुकदमे के बाद सुशील शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने भी ये सजा बरकरार रखी। बाद में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जेल में सुशील शर्मा पुजारी बन गया, वो अब तक तिहाड़ जेल में 23 साल काट चुका है और अब इस तरह का मूव है कि उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर हमेशा के लिए जेल से छोड़ दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट को भी मना लिया, सुप्रीम कोर्ट कहता है इतना रिफॉर्म हुआ है इतना बढ़िया, यू नो सबके लिए पूजा कर रहा है सब कुछ, ये दैट इज द इम्प्रेशन दैट एवरीबॉडी इज गॉट, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें तो पुलिस ने जो काम करना था कर लिया है इसमें, हमारे सेटिस्फैक्शन उससे आता है और हमारा देश का सिस्टम है, कानून है, नियम है, और ये सारे नियम के मुताबिक जो फैसला करने के लिए जुडिशरी है वो अपने समझ से वो कैसा कर सकते हैं वो तो उनकी, दैट इज देयर प्रिविलेज।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।